एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं।
हाँ, चिकित्सा के इतिहास की गहराइयों में।
बिल्कुल। और इस सफर में हमारे गाइड हैं विलियम बर्नम और उनकी किताब द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन।
ये किताब ना उस आम धारणा को चुनौती देती है कि चिकित्सा बस वैज्ञानिकों की लैब में ही बनी है।
सही कहा। बर्नम का एक बड़ा विचार जो मुझे शुरू में ही बहुत अहम लगा वो ये है कि भाई हर युग को वैसी ही चिकित्सा मिलती है जैसी उसके विचार, तकनीक और सामाजिक संरचना होती है।
ये बात आज के जमाने में कितनी जरूरी लगती है ना?
बिल्कुल। जब हम कोविड जैसी महामारी देखते हैं या सोचते हैं कि अरे एंटीबायोटिक दवाएं काम क्यों नहीं कर रही।
हाँ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस।
जी, तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि भाई हम यहाँ तक पहुंचे कैसे।
ये सिर्फ विज्ञान की कहानी तो है नहीं,
जा?
ये हमारे समाज की, हमारी संस्कृति की, हमारी सोच के बदलने की भी कहानी है।
बिल्कुल। और ये जानना भी कि जो चीजें आज हमें कितनी सामान्य लगती हैं, जैसे डॉक्टर के पास जाना, दवा लेना,
ऑपरेशन करवाना, हाँ,
इनका इतिहास कितना उतार चढ़ाव भरा रहा है।
तो आज हम बायनम की किताब के जरिए चिकित्सा के विकास की इसी मानवीय कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। वो कौन से बड़े मोड़ थे, कौन सी सोच बदली,
और आज के लिए हम इससे क्या सीख सकते हैं। हमारी ये जो बातचीत है इसका आधार विलियम बर्नम की किताब के दो विस्तृत सारांश रहेंगे।
ठीक है, तो चलिए पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं।
हाँ, विलियम बर्नम वो सिर्फ इतिहासकार नहीं है।
अच्छा।
वो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में चिकित्सा इतिहास के प्रोफेसर एमेरिटस हैं। पर दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने पहले मेडिसिन पढ़ी, डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग ली।
ओहो, और फिर इतिहास में आए।
जी हाँ। तो ये जो दोहरा नजरिया है ना मेडिसिन और इतिहास का।
हाँ, ये उन्हें बहुत खास बनाता है। वो सिर्फ बाहर से देखने वाले नहीं है।
नहीं, वो अंदर की बातें भी समझते हैं। वो वेलकम इंस्टीट्यूट फॉर द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन जैसी जानी मानी संस्था से भी जुड़े रहे हैं और इस विषय पर कई अहम किताबें लिखी हैं उन्होंने।
उनकी सबसे बड़ी खासियत शायद यही है कि वो बहुत सारी जानकारी को जो काफी जटिल हो सकती है उसे आसान बना देते हैं।
हाँ, और दिलचस्प तरीके से पेश करते हैं।
वो सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या बदला, उनका जोर इस पर ज्यादा रहता है कि क्यों बदला।
बिल्कुल। वो वैज्ञानिक खोजों को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल में रखकर देखते हैं, अलग करके नहीं।
सही कहा। वो हमें दिखाते हैं कि चिकित्सा कोई अलग थलग चीज नहीं है, वो समाज का ही एक हिस्सा है और उसी के साथ बदलती है। और यही चीज इस किताब को इतनी जरूरी बनाती है।
अच्छा, तो अब किताब पर आते हैं। ये किताब करती क्या है?
ये हमें हजारों साल पीछे ले जाती है, उस समय में जब लोग सोचते थे कि बीमारी जादू टोने से होती है या देवता नाराज हो गए हैं।
हाँ बिल्कुल, शुरुआत से।
और वहां से लेकर आज की जो हाईटेक सबूतों पर आधारित चिकित्सा है उस तक का पूरा सफर दिखाती है।
और इसका जो मुख्य तर्क है वो ये कि जिसे हम आधुनिक चिकित्सा कहते हैं वो सिर्फ नई मशीनों या दवाओं का नतीजा नहीं है।
तो फिर क्या है?
ये असल में एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विज्ञान, समाज में जो बदलाव हो रहे हैं, लोगों के विश्वास, नई टेक्नोलॉजी, इन सब के बीच एक तरह की खींचतान चलती रहती है, एक तालमेल बनता है।
और ये रास्ता कोई सीधा सीधा नहीं रहा है ना?
बिल्कुल नहीं। बायनम दिखाते हैं कि इतिहास सफलताओं से तो भरा है पर इसमें ठहराव भी आए हैं।
हाँ, रुकावटें भी थीं,
क्रांतियां भी हुई और कई बार तो नए विचारों का जबरदस्त विरोध भी हुआ। हर जमाने की जो चिकित्सा है वो उस जमाने की सोच, उसकी तकनीक, उसके समाज की एक परछाई जैसी है।
इस किताब का एक और अहम पहलू है, ये दिखाती है कि चिकित्सा का मतलब ही कैसे बदलता रहा है।
हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। शरीर को कैसे समझा गया,
बीमारी की वजह क्या मानी गई, इलाज करने वाले की भूमिका क्या थी, स्वास्थ्य किसे कहते हैं, ये सारे विचार रुके नहीं रहे, बदलते रहे।
सही कहा। ये सिर्फ दवाओं और डॉक्टरों का इतिहास नहीं है, ये हमारे सोचने के तरीके का, हमारी संस्कृति का भी इतिहास है।
चलिए अब इस लंबे सफर के कुछ खास पड़ावों पर जरा नजदीकी से गौर करते हैं।
हाँ, शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। प्राचीन समाज, तब बीमारी अक्सर एक रहस्य थी।
हाँ, लगता था कोई दैवीय नाराजगी है या कोई बुरी आत्मा का असर।
तो इलाज कौन करता था? पुजारी, ओझा, जादूगर।
और तरीके क्या थे?
पूजा पाठ, जड़ी बूटियां, टोटके।
हाँ, मिस्र जैसी जो पुरानी सभ्यताएं थीं उनमें कुछ प्रैक्टिकल चीजें दिखती हैं, जैसे वो शवों को सुरक्षित रखते थे, ममी बनाते थे।
हाँ, उससे शायद शरीर की थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी उन्हें।
और कुछ मामूली सर्जरी भी शायद होती थी, पर सब कुछ धर्म और जादू टोने के दायरे में ही था। फिर यूनान में, ग्रीस में हिपोक्रेट्स के साथ एक बड़ा मोड़ आया। ये करीब 400 ईसा पूर्व की बात है।
जी।
उन्होंने और उनके साथियों ने कहा, नहीं भाई, बीमारियां प्राकृतिक कारणों से होती हैं, किसी देवी देवता के श्राप से नहीं।
ये सोची अपने आप में क्रांतिकारी थी उस समय।
बिल्कुल, और यहीं से वो आया चार रसों वाला सिद्धांत, फोर ह्यूमर्स जिसे कहते हैं।
हाँ, मतलब शरीर में चार तरल पदार्थ हैं, खून, कफ, पीला पित्त, काला पित्त।
जी,
और उनका संतुलन ही सेहत है,
और अगर संतुलन बिगड़ा तो मतलब बीमारी।
हाँ, आज सुनने में ये अजीब लगता है ना।
हाँ, काफी।
पर उस जमाने के हिसाब से सोचें तो ये एक तर्कसंगत, मतलब एक नेचुरल व्याख्या थी।
इसने कम से कम बीमारी को समझने, उसके लक्षण देखने और इलाज का एक ढांचा तो दिया।
हाँ, जैसे खानपान में बदलाव, आराम, या वो जो करते थे खून बहाना।
हाँ, शरीर से खराब रस निकालने के लिए।
जी,
और वो मशहूर हिप्पोक्रेटिक शपथ जो डॉक्टर की नैतिकता की बात करती है,
वो भी इसी परंपरा से आई है। इसके बाद रोमन साम्राज्य में गैलन का नाम आता है, दूसरी शताब्दी ईस्वी में।
हाँ, गैलन बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने हिप्पोक्रेट्स के विचारों को और आगे बढ़ाया, शरीर रचना पर लिखा, शरीर के काम करने के तरीके पर लिखा।
हालांकि उनका जो शरीर रचना का ज्ञान था वो ज्यादातर जानवरों के विच्छेदन पर आधारित था।
अच्छा, लेकिन उनकी बातें इतनी प्रभावशाली थीं कि लगभग 1500 साल तक पश्चिमी चिकित्सा जगत में उन्हीं का बोलबाला रहा।
कमाल है, सोचना भी मुश्किल है कि एक व्यक्ति के विचार इतने लंबे समय तक कैसे टिके रहे हैं।
शायद इसलिए कि उनकी प्रणाली बहुत फैली हुई थी और उस समय उसे चुनौती देने वाला कोई ठोस विकल्प नहीं था शायद।
यूरोप में जब रोमन साम्राज्य कमजोर पड़ा तो ज्ञान कहाँ गया?
वो काफी हद तक मठों में सिमट गया, इलाज को एक तरह से पुण्य का काम माना जाने लगा।
लेकिन इसी दौरान 8वीं से 13वीं सदी के बीच इस्लामी दुनिया में, वहाँ चिकित्सा का स्वर्ण युग चल रहा था।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण दौर था। वहाँ यूनानी ग्रंथों का अरबी में अनुवाद हुआ।
सिर्फ अनुवाद नहीं, उन पर टीकाएं लिखी गईं, उनमें नई चीजें जोड़ी गईं।
इब्न सीना, जिन्हें एविसेना कहते हैं, उनकी किताब अल कानून फित्तिब, द कैनन ऑफ मेडिसिन।
हाँ, वो तो एक विशाल मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया बन गई। और अल राजी, रेजेज जैसे विद्वानों ने क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस, यानी मरीज को ध्यान से देखने पर बहुत जोर दिया।
और क्या उन्होंने दुनिया के पहले व्यवस्थित अस्पताल भी नहीं बनाए?
बिल्कुल, वो सिर्फ इलाज की जगह नहीं थी, वहाँ पढ़ाया भी जाता था, शोध भी होता था।
और बाद में जब इन अरबी किताबों का लैटिन में अनुवाद हुआ तो ये ज्ञान वापस यूरोप पहुंचा।
ज्ञान का ये आदान प्रदान कितना जरूरी है ना।
हाँ, फिर आया यूरोप में पुनर्जागरण और वैज्ञानिक क्रांति का दौर, 15वीं से 17वीं सदी।
अब जोर बदला, पुरानी किताबों पर आंख मूंदकर भरोसा करने के बजाय खुद अपनी आंखों से देखने और प्रयोग करने पर जोर बढ़ा।
और यहाँ एंट्री होती है एंड्रियस वेसालियस की। 1643 में उनकी किताब आई, डी ह्यूमैने कॉर्पोरिस फैब्रिका,
मानव शरीर की संरचना पर।
हाँ, वेसालियस ने खुद मानव शरीरों का विच्छेदन किया और गैलन की बताई कई बातों को गलत साबित कर दिया।
ये बहुत बड़ी बात थी, मतलब अवलोकन को, ऑब्जर्वेशन को सदियों पुरानी अथॉरिटी से ऊपर रखना।
उनकी किताब में शरीर रचना के जो चित्र थे वो भी बहुत डिटेल्ड थे, बहुत ललित थे।
हाँ, उन्होंने मेडिकल शिक्षा को हमेशा के लिए बदल दिया।
इसके बाद आए विलियम हार्वे 1628 में।
हार्वे ने साबित किया कि खून शरीर में बंद नलियों में घूमता है और दिल एक पंप की तरह काम करता है।
इसने तो गैलन के शरीर विज्ञान की नींव ही हिला दी।
बिल्कुल, शरीर को अब एक मशीन की तरह देखा जाने लगा था।
ये वो दौर था जब धीरे धीरे पुरानी मान्यताएं टूट रही थी और नई खोजें उनकी जगह ले रही थी।
अब 18वीं और 19वीं सदी की ओर बढ़ते हैं।
18वीं सदी में क्या हुआ?
बीमारियों को लक्षणों के आधार पर क्लासिफाई करने का, वर्गीकृत करने का चलन बढ़ा।
हाँ, नोजोलॉजी, और पेरिस जैसे शहरों में बड़े अस्पताल बनने लगे। वहाँ मरीजों का व्यवस्थित अध्ययन होता था। और एक बहुत बड़ा आविष्कार हुआ 1816 में,
स्टेथोस्कोप, रेने लिनिक ने बनाया।
सोचिए, पहली बार डॉक्टरों को शरीर के अंदर की आवाजें सुनने का जरिया मिला।
निदान कितना सटीक हो गया होगा इससे।
फिर 19वीं सदी, वो तो जैसे क्रांतियों का ही दौर था चिकित्सा में।
हाँ, पहला बड़ा धमाका, एनेस्थीजिया, बेहोशी की दवा।
1840 के दशक में ईथर और क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल शुरू हुआ। इसके बिना सर्जरी कितनी भयानक होती होगी,
कल्पना करना भी मुश्किल है। एनेस्थीजिया ने जटिल सर्जरी को संभव बनाया।
दूसरा बड़ा बदलाव था सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जोर।
उस समय वो मियास्मा सिद्धांत चलता था, यानी खराब हवा से बीमारियां फैलती हैं।
हाँ, ये सिद्धांत तो गलत था,
पर इसके चलते साफ सफाई पर, बेहतर पानी पर, सीवेज सिस्टम पर ध्यान दिया गया
और उससे बीमारियों को रोकने में जबरदस्त मदद मिली।
कभी कभी गलत रास्ते भी सही मंजिल तक पहुंचा देते हैं।
और फिर आई वो खोज जिसने सच में सब कुछ बदल दिया,
रोगाणु सिद्धांत, जर्म थियरी।
लुई पाश्चर ने फ्रांस में दिखाया कि बहुत छोटे जीव माइक्रोब्स खाने पीने की चीजों को खराब करते और बीमारियां फैलाते।
और जर्मनी में रॉबर्ट कोच, उन्होंने इन रोगाणुओं को अलग करने, उन्हें उगाने की तकनीक विकसित की
और साबित किया कि खास रोगाणु ही खास बीमारी पैदा करता है, जैसे टीबी का, हैजा का।
ये तो जबरदस्त कामयाबी थी। अब दुश्मन का पता चल गया था, ये छोटे छोटे कीटाणु।
इसी के बाद जोसेफ लिस्टर ने सर्जरी में एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल शुरू किया, कीटाणुनाशक।
और ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन से होने वाली मौतें बहुत कम हो गई।
टीके बनने लगे, साफ सफाई के नियमों का महत्व और बढ़ गया।
लेकिन यहाँ इग्नास सेमलवाइस का जिक्र करना जरूरी है।
हाँ, वो डॉक्टर जिन्होंने हाथ धोने की सलाह दी थी।
जी, उन्होंने देखा कि अगर डॉक्टर एक मरीज को देखने के बाद हाथ धोकर दूसरे के पास जाएं, खासकर प्रसव के मामलों में, तो माओं की मौतें कम होती हैं।
लेकिन उनके अपने साथी डॉक्टरों ने ही उनका मजाक उड़ाया।
हाँ, विरोध किया। ये दिखाता है कि नई और सही बात को भी स्वीकार करवाना कितना मुश्किल हो सकता है,
खासकर जब वो स्थापित तरीकों को चुनौती दे। ये परंपरा बनाम नवीनता की लड़ाई हमेशा चलती रहती है शायद।
बिल्कुल। अब 20वीं सदी में आते हैं। यहाँ मैजिक बुलेट का आइडिया आया।
मैजिक बुलेट मतलब?
मतलब ऐसी दवा जो सीधे बीमारी के कीटाणु पर हमला करे और शरीर को कम से कम नुकसान पहुंचाए।
अच्छा, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है पेनिसिलिन।
जी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसे इत्तेफाक से खोजा 1928 में,
और 1940 के दशक में इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ।
इसने एंटीबायोटिक दवाओं का युग शुरू किया। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाले मौतों में भारी कमी आई।
लगा जैसे कोई जादू हो गया हो।
हाँ, इसके साथ ही पोलियो जैसे रोगों के टीके आए, सर्जरी में और तरक्की हुई, पोषण का महत्व समझा गया।
लेकिन जैसा बायरोम कहते हैं, हर प्रगति की एक कीमत थी होती है।
सही, एंटीबायोटिक्स ने जाने बचाई तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की नई समस्या खड़ी हो गई, दवाओं का बेअसर होना।
हाँ, ये आज बहुत बड़ी चिंता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा व्यवस्थित हुईं।
कई देशों में सरकारी स्वास्थ्य प्रणालियां बनी, जैसे ब्रिटेन में NHS।
लोगों की उम्र बढ़ी तो अब दिल की बीमारियां, कैंसर, डायबिटीज जैसी पुरानी बीमारियां ज्यादा आम हो गईं,
जो नई चुनौतियां लेकर आईं।
और फिर 1953 में वॉटसन और क्रिक ने DNA की संरचना खोजी।
इसने जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का दरवाजा खोल दिया।
बीमारियों को बिल्कुल बुनियादी स्तर पर समझने की राह खुली और वो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की उम्मीद जगी,
यानी हर व्यक्ति के लिए अलग, उसकी जरूरत के हिसाब से इलाज।
लेकिन आज भी चुनौतियां कम नहीं है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है,
स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत,
जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़े नैतिक सवाल,
और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में स्वास्थ्य सुविधाओं में भारी असमानता।
हाँ, ये सफर अभी जारी है।
तो ये पूरी कहानी सुनने के बाद कुछ खास बातें या कहिए थीम्स उभर कर सामने आती हैं, है ना?
हाँ, बिल्कुल। पहली तो शायद यही कि चिकित्सा का ज्ञान समाज से कट कर विकसित नहीं होता।
सही।
जो सच हम आज मानते हैं वो हमारे समय की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थितियों से प्रभावित होता है।
जैसे हिपोक्रेट्स के जमाने में शरीर के रसों का संतुलन अहम था,
आज हम जीन्स और सेल्स की बात करते हैं,
कल शायद कुछ और अहम हो जाए।
ज्ञान स्थिर नहीं है, वो बनता और बदलता रहता है।
दूसरी थीम है परंपरा और नए विचारों के बीच का तनाव।
हमने सेमलवाइज का उदाहरण देखा।
हाँ।
अक्सर नए विचार आसानी से स्वीकार नहीं किए जाते। डॉक्टरों का अपना रुतबा हो सकता है, आर्थिक हित हो सकते हैं,
या बस पुरानी आदतें,
ये सब बदलाव के रास्ते में रोड़ा बन सकते हैं।
ये बात आज भी उतनी ही सच है। जब कोई नई थेरेपी आती है या इलाज का नया तरीका सुझाया जाता है तो उसे स्थापित होने में समय लगता है, बहस होती है।
तीसरा मुद्दा है ज्ञान का फैलाव, मतलब ज्ञान कैसे ज्यादा लोगों तक पहुंचा।
हाँ, लोकतांत्रिकरण। पहले ज्ञान कुछ खास लोगों तक सीमित था, पुजारी, विद्वान, डॉक्टर।
फिर छपाई आई, शिक्षा फैली, अब इंटरनेट है,
ज्ञान ज्यादा लोगों तक पहुंचा है, जो अच्छी बात है। लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा जागरूक हुए हैं।
लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है।
क्या?
गलत जानकारी या अफवाहें भी उतनी तेजी से फैलती हैं।
हाँ, ये तो है। सही और गलत में फर्क करना एक नई चुनौती बन गया।
और चौथी बात, चिकित्सा की प्रगति अक्सर दोधारी तलवार जैसी होती है।
मतलब
ये कि वो नई समस्याएं भी पैदा करती है। एंटीबायोटिक्स ने जाने बचाई पर सुपर बग्स पैदा किए।
अच्छा, हाँ, उम्र बढ़ी तो बुढ़ापे की बीमारियां बढ़ी।
स्पेशलाइजेशन बढ़ा तो मरीज को टुकड़ों में देखा जाने लगा, एक पूरे इंसान की तरह नहीं।
हाँ, ये समग्र बनाम खंडित दृष्टिकोण का द्वंद भी लगातार चलता रहता है।
क्या हम सिर्फ बीमारी के लक्षण देखें या पूरे इंसान को, उसके माहौल को भी समझें?
जैसे भारत में हम अक्सर पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों, आयुर्वेद, यूनानी और आधुनिक एलोपैथी के बीच संतुलन की बात करते हैं।
हाँ, वो भी इसी द्वंद्व का एक रूप है शायद।
बायरमैन की किताब कुछ ऐसे विचारों से भरी है जो वाकई सोचने पे मजबूर करते हैं।
हाँ, कुछ पर बात करते हैं। पहला, जैसा कि हमने शुरू में कहा था, हर युग को वो दवा मिलती है जिसका वो हकदार होता है।
इसका मतलब यही है कि चिकित्सा उस समाज का आईना होती है जिसमें वो पनपती है।
उसकी सफलता या विफलता सिर्फ वैज्ञानिक खोजों पर निर्भर नहीं करती।
नहीं, बल्कि समाज की सोच, उसकी प्राथमिकताएं, उसके पास कितने संसाधन हैं, इन सब पे भी निर्भर करती है।
एक और विचार, बीमारी मानवता से पुरानी है लेकिन चिकित्सा एक मानवीय रचना है।
ये याद दिलाता है कि बीमार पड़ना तो एक जैविक प्रक्रिया हो सकती है,
लेकिन उससे निपटना, उसे समझना, उसका इलाज खोजना, ये सब इंसानी सोच, संगठन और संस्कृति की देन है। ये हमारी उपलब्धि है।
एक थोड़ा चौंकाने वाला विचार भी है। चिकित्सा का इतिहास काफी हद तक प्लेसिबो प्रभाव का इतिहास है।
प्लेसिबो प्रभाव मतलब मन का वहम?
नहीं, बायरम का मतलब ये नहीं कि पुराने इलाज बेकार थे, बल्कि ये कि उनका असर अक्सर मनोवैज्ञानिक ज्यादा था, मरीज के विश्वास पर निर्भर करता था।
अच्छा।
धीरे धीरे ऐसे इलाज आए जिनका असर शरीर पर ज्यादा सीधा और साबित करने लायक था, लेकिन वो मानते हैं कि विश्वास और उम्मीद का असर आज भी इलाज में मायने रखता है।
ये दिलचस्प है।
और आखिर में ये जरूरी बात, मानव इतिहास के ज्यादातर हिस्से में डॉक्टर के पास जाना खतरनाक हो सकता था।
सच में?
हाँ, जीवन प्रत्याशा में सबसे बड़ी बढ़ोतरी चमत्कारिक इलाजों से नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों से हुई है। साफ पानी, बेहतर पोषण, स्वच्छता,
ये हमें याद दिलाता है कि बड़ी बड़ी खोजों के साथ साथ बुनियादी चीजें कितनी जरूरी हैं।
जी, अक्सर हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की नींव तो यही है।
तो इस सारे इतिहास से हम आज क्या सीख सकते हैं, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे इस्तेमाल करें?
पहली चीज तो यह है कि स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी नई जानकारी आए, कोई दावा हो, कोई खबर, उसे थोड़ा सोच समझ कर देखें।
हाँ, आलोचनात्मक बने, ये समझें कि ज्ञान कैसे विकसित होता है, कौन सी बात अभी शुरुआती शोध है और कौन सी स्थापित तथ्य।
बिल्कुल। और ये भी देखें कि क्या किसी दावे के पीछे कोई स्वार्थ तो नहीं छिपा।
और ये इतिहास हमें डॉक्टर मरीज के रिश्ते को भी समझने में मदद करता है ना?
हाँ, ये रिश्ता हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज है। ये जानने से मरीज शायद ज्यादा आत्मविश्वास से अपनी बात रख सकते हैं
और डॉक्टर भी शायद मरीज के सवालों को बेहतर ढंग से समझ पाए।
एक और बात, ये इतिहास हमें स्वस्थ संदेह सिखाता है।
मतलब
ये जानकर कि चिकित्सा के सत्य बदलते रहे हैं, हम आज की बातों पर आंख मूंद कर यकीन करने से बच सकते हैं।
लेकिन साथ ही हमें उन लोगों के संघर्ष की सराहना भी करनी चाहिए जिनकी वजह से प्रगति हुई।
बिल्कुल। और हाँ, सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे, जैसे आजकल हम वैक्सीन को लेकर हिचक देखते हैं
या किसी महामारी के दौरान नियमों पर बहस होती है,
ये सब नया नहीं है। इतिहास जानने से हम इन बहसों को ज्यादा गहराई से और शायद थोड़े ठंडे दिमाग से समझ सकते हैं।
और सबसे अहम सीख शायद वही है जो आखिरी कोटेशन में थी, रोकथाम इलाज से बेहतर है।
जी, साफ सफाई, अच्छा खानपान, व्यायाम, ये बुनियादी चीजें शायद उतनी ग्लैमरस ना लगें,
पर स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है।
इस पूरी चर्चा में मेरे लिए जो सबसे दिलचस्प बात थी वो ये कि कैसे पुराने, यहाँ तक कि गलत साबित हो चुके विचार भी,
हाँ,
अपने समय में कितने तर्कसंगत और उपयोगी समझे जाते थे।
जैसे वो चार रसों वाला सिद्धांत।
हाँ, ये हमें सिखाता है कि अतीत को सिर्फ आज के चश्मे से देखकर खारिज नहीं करना चाहिए।
बिल्कुल, उसे उसके अपने संदर्भ में समझने की कोशिश करनी चाहिए।
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि चिकित्सा सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये विज्ञान, समाज, संस्कृति, अर्थशास्त्र और इंसानी मूल्यों का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है।
सही कहा, कोई भी इलाज कितना कारगर होगा ये सिर्फ दवा की केमिस्ट्री पर निर्भर नहीं करता,
बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि समाज उसे कैसे अपनाता है, क्या वो सबके लिए उपलब्ध है
और क्या वो हमारी समाज और मूल्यों से मेल खाता है। भविष्य की चिकित्सा को अगर सफल होना है तो विज्ञान के साथ साथ इन मानवीय पहलुओं पर भी ध्यान देना ही होगा।
सच कहा, चिकित्सा का अतीत समझे बिना हम उसके भविष्य को सही दिशा नहीं दे सकते।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।